Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kathopanishad Dvitiya Adhyaya Prathama Valli. So, ye mantra ki atham logunikan naswa. Yadeveha tadamutra, yadamutra tadanviha. मृत्यु समृत्यु मापनोति या इह नानेव पश्यति। ये दो दो मंत्रों की जोड़ी है, जैसे दसवां और ग्यारहवां। तो जो यहाँ है वह वहां है, और जो वहां है वह यहाँ है, और मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहाँ नानात्व को देखता है। तो आगे के मंत्र में कहा, मनसै वेदम् आप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन। मन से ही इसे प्राप्त किया जा, तत्व को प्राप्त कर किया जा सकता है। यहाँ नानात्व तो कुछ भी नहीं है। और यह करके जिस ब्रह्म तत्व का पूर्व मंत्र में बताया वही, और मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जाता है जो यहाँ नानात्व तो को देखता है। वहां प्राप्तनोति था, यहाँ गच्छति है। ऐसे दो मंत्र की यहाँ जोड़ी है। तो अब ये पूर्व के मंत्र में हम लोगों ने जो विचार किया था, तो उसमें एक तो बात ये थी, कुछ बातें बड़ी सुंदर मुख्य थी जो दोहरा लेना चाहिए एक सेकंड एक मिनट में। तो एक तो कहा था कि नाना इव पश्यति, अर्थात अनेकता के समान देखता है। तो एक तो नाना इव पश्यति, वस्तुतः न पश्यति, अर्थात जो हमारी दृष्टि है उसको लेकर बताया एक बात, और दूसरा यह अनानात्म के नाना इव पश्यति। तो पश्यति इव, तो यहाँ अनाना है, लेकिन ऐसा लगता है मानो हम अनेकता को देख रहे हैं। है तो अनेकता नहीं, पर हम अनेकता को देख रहे हैं, दृष्टि कहीं हमारी बंद गई। तो एक तो वस्तुओं में जो दिखती है अनेक रूप से, उनमें अनेकता नहीं है, और एक हमारी दृष्टि कहीं बंद गई है, इसलिए हम ऐसे इव है ना वहां, तो देखते जैसे लगते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। जब सत्य दृष्टि की प्राप्त होती है, वस्तु दृष्टि की प्राप्त होती है, तो वहां अनेकता दिखती नहीं, सब अपनी आत्मा दिखते हैं, सब अपनी आत्मा है। कासों करो विरोध, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहिं जगत, कैसन करहिं विरोध। तो अब किससे विरोध करें, क्योंकि सब में अपनी आत्मा दिखती है। तो ये एक बात है। तो इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि परिच्छिन्नता कहीं है नहीं, परिच्छिन्नता की स्वीकृति हमने स्वयं दी, आत्मा में कहीं परिच्छिन्नता है नहीं। यदि अनंत देखते हैं तो अनंत ही अनंत को देख रहा है, उसी में विभिन्न पंच महाभूत जो प्रकट हो गए, उसी में विभिन्न आकार प्रकट हो रहे हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और बिगड़ती हैं, पानी में बुदबुदे फेन बनते हैं और बिगड़ते हैं। और हम लोगों की तो क्या कथा आपको बताएं, रोज ना रोज किसी ना किसी का फोन आ जाता है कि हमारे घर में ऐसी मृत्यु हो गई। तो ये तो मृत्यु का ही यहाँ उपदेश है, यमराज का मृत्यु देवता का उपदेश है। तो उस मृत्यु को आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। रामघाट में सूर्या बाबा जी महाराज की तपस्थली है, तो वहाँ ऊपर हमारी कुटिया थी, वहाँ द्वार के पास एक भिक्षा की खिड़की बना ली थी। तो भिक्षा देके जाते हम अंदर मौन थे और बंद थे बहुत दिनों तक, अपना स्वाध्याय चिंतन मनन ध्यान इत्यादि करते। तो एक बार दोपहर के दिन किसी ने वो भिक्षा की खिड़की पीटी, दोपहर को तो प्राय शांति होती है, बहुत ज्यादा पीटी तो हम देखने गए। तो दो माताएं खड़ी थी, तो एक माता ने बोला, तो हम दोनों तरफ खिड़की खुलती है ना, उधर भी इधर भी, तो हमने अपनी खोली, उन्होंने अपनी खोल ही रखी थी। तो एक माता ने बोला कि ये जो दूसरी माता है इसके भाई की मृत्यु हो गई है, और भाई की मृत्यु हो गई है तो ये बहुत दुखी है और इसको कहीं शांति नहीं है। माता कोई छोटी उम्र की नहीं थी, लड़की नहीं थी कि भावुक हो, कुछ ठहरी हुए। तो हमने बात सुनी और कहा कि इसलिए बहुत दुखी है तो हम लोग इसको समझाते रहते हैं, हार कर हम आपके पास ले आए हैं। अब देखो जब एकांत में होता है साधु तो उसका दिमाग चढ़ा रहता है। आपको एक बात बताते हैं, इसीलिए वो कहते भी हैं कि जो तपस्या करते हैं उनके पास मत जाना, पता नहीं कब श्राप दे दे, कब वरदान दे दे। तो हमने एक लंबा खर्रा लिखा, मौन थे तो बोल तो सकते नहीं, तो अंदर गए अपनी कुटिया में, उनको इशारा किया खड़े रहो और बहुत लंबी बात लिखी। तो हमने लिखा कि यदि मृत्यु हुई है तो और तुम्हें दुख है तो उस दुख का अनुसंधान करो, ये जगह जगह जाकर सहानुभूति लेने क्यों जाते हो और अपने दुख का भोग क्यों भोगते हो। एक तो दुख के तुम भोक्ता बनते हो, एक बात, और दूसरी दुख के भोक्ता बनते हो और दूसरों को दिखाकर अपना दुख हल्का करते हो, तो अन्य 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 का आश्रय लेते हो, इससे अच्छा है कि अपने ही अंदर उस दुख को बैठ के विचार करो, उस मृत्यु का विचार करो। 3 दिन तक तुम मृत्यु का दुख का विचार कर लो, फिर उसके बाद हमारे पास आना। अभी आके और यहाँ पर लंबी लिखी थी कुछ बात, अभी इतना ही याद है, तो ऐसे उनको लिख दिया। तो क्या है कि हम सचमुच एक ही विषय पर, एक ही वृत्ति पर टिक कर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि नानात्व तो जो है, ये अनेकता है, ये हमें आकर्षित करती रहती है, ये अनेकता हमें बाहर खींचती रहती है। यदि भाई से बहुत प्रेम था तो उस भाई के साथ जो प्रेम था उसके कारण आपको उस दुख की गहराई में डूबना चाहिए। हमने उनका दुख नहीं मिटाया, हमने कहा इसी दुख को ही अपना साधन बनाओ, इसको ही साधन बना लो और खोजो जरा कि वो परमात्मा क्या है। तो आपका यह जो मैं है यह अकाट्य है, यह अबाध्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई घटना नहीं रोकती, कोई परिस्थिति नहीं रोकती, आपके शरीर की कोई उम्र अवस्था, वो कोई भी इस मैं को घेरे में नहीं ले पाती है, यह ज्यों का त्यों रहता है। तो मन से ही वेदम आप्तव्यम, ये आपका जो अपरिच्छिन्न मैं है उसको प्राप्त करना है। तो कहते हैं क्योंकि पूर्व के मंत्र में भाष्यकार ने 10वें मंत्र में कहा कि विज्ञान एक रस है, वह निरंतर रहता है, सदा रहता है, आकाशवत और परिपूर्ण है, और ब्रह्म ही वाहमस्मि इति पश्येत, और मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार से उसको पश्येत, पश्येत नहीं पश्येत अर्थात उसको ऐसे देखे, तो इस प्रकार से उसको देखे वो। और यदि अनेकता को देखता है तो मृत्यु को देखता है, अनेकता माने ही मृत्यु है, अनेकता को देखना ही मृत्यु है, और एक को देखना वह मृत्यु से छुटकारा है। तो दृष्टि को सुधारना है। तो यहाँ मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मन से ही तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ अनेकता कुछ भी नहीं है, ना यह नाना अस्ति किंचन, या ये यहाँ पर एक और जोड़े, वहां कह रहे हैं कि मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, नाना तो देखता है, और यहाँ पर घोषणा की कि यहाँ नाना कुछ नहीं है। कौन घोषणा कर रहे हैं? मृत्यु के देवता यमराज, अर्थात जहां जाकर संपूर्ण नाम रूप कर्म का अभाव हो जाता है, वो मृत्यु। तो कहा यहाँ नाना कुछ भी नहीं है, यह से यहाँ ब्रह्म तत्व को दिखाया जा रहा है। ऐसी ये बात है। इह से आप हमेशा इह लोक बोलते हैं, लेकिन यह उपनिषद ये काव्य रूपी है। इस कठोपनिषद यह एक अत्यंत उत्कृष्ट कविता है। इसमें इह से ब्रह्म को दिखाया जा रहा है। तो कहा यहाँ नाना तो ब्रह्म तत्व में नाना तो कुछ भी नहीं है। अब मृत्यु से मृत्यु गच्छति, मृत्यु से मृत्यु को देखता है, नाना को जो देखता है मृत्यु से मृत्यु को जाता है। अब इसमें भाष्यकार भगवान आए बहुत सुंदर, पहला ही एक ही पंक्ति में जहाँ वो संगति लगा रहे हैं वही बहुत बड़ी स्पष्टता की है। उनकी एक पंक्ति भी आपके चिंतन के लिए, उस पर विचार करने के, लिखने के लिए कई दिनों के लिए पर्याप्त होती है। अगर एक मान लो पूरे जीवन को ना भी कहें तो कुछ दिन कह लो। प्राग एकत्व विज्ञानात आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा इदम् ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम् आत्मैव न अन्यत् अस्ति इति। जो गीता प्रेस वाली देख रहे हैं ना, तो पूर्व की पंक्ति और मंत्र के पूर्व की और पश्चात को जोड़ लेना, वो एक साथ है। तो क्योंकि बीच में मंत्र दिया है वो भी ठीक है। तो कहा कि एकत्व क्या, क्योंकि वहां असमाप्त क्रियापद है। तो कहा एकत्व ज्ञान के पहले प्राग, प्राग एकत्व विज्ञानात, एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, आचार्य और शास्त्र से संस्कार युक्त हुए मन से इदम् ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम्। नहीं तो कोई ये समझ लेगा मन से ही प्राप्त कर लेंगे, मूल मंत्र में तो यही कह रहे हैं। तो भाष्यकार भगवान ने करुणा से कहा कि ऐसे मन के द्वारा ही यह एक रस ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कहा कि आत्मा एव न अन्यत् अस्ति इति। तो सब कुछ आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार उसे प्राप्त करने योग्य है, ऐसे उसे प्राप्त करना चाहिए। तो प्राग एकत्व विज्ञान, इसमें दो बात कह रहे हैं। एकत्व विज्ञान के पहले, अर्थात यदि आप कहें कि एकत्व विज्ञान के बाद तो हमें छोड़ना ही है, साधन पक्ष को हमें छोड़ना ही है। यहाँ साधन क्या है? का श्रवण मनन निधिध्यासन, अथवा उसके भी पहले आप जो जप ध्यान करते हैं, विवेक करते हैं, उसके पहले विवेक, साधन चतुष्टय में विवेक, साधन चतुष्टय मुख्य रूप से विवेक को ले लीजिए। तो कहा विवेक करते हैं तो उसको हम पहले ही छोड़ देते हैं, एकत्व विज्ञान के पहले ही छोड़ देते हैं, तो विवेक नहीं होने से साध्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो साधन से जो प्राप्त होता है तो सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए विवेक की आवश्यकता बनी रहती है। तो उसको यदि हम पहले ही छोड़ देते हैं, पहले से हम लोग शुरू से करें ना, तो क्या विवेक को हम पहले ही छोड़ देते हैं, जो दृश्य दिखता उसमें विवेक करो, क्या स्थिर है क्या अस्थिर है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये विवेक करना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात कहा कि ठीक है हम विवेक करते हैं तो जप क्यों करें, जप का निषेध करते हैं आजकल, तो जप नहीं करेंगे तो आपको स्थिर होकर बैठने का अभ्यास नहीं बनेगा, और जब स्थिर होकर बैठने का अभ्यास नहीं बनेगा ध्यान ही नहीं बनेगा, ध्यान अर्थात एकाग्रता, तो आप विवेक कैसे करेंगे? जब एकाग्रता ही नहीं बनी, मन चंचल है, नानात्व में दौड़ रहा है, तो आप कैसे कैसे विवेक करेंगे? और विवेक नहीं करेंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन सब व्यर्थ ही जाएगा। तो पूर्व पूर्व की भूमिका का यहाँ को उसको उपलक्षित कराया जा रहा है, एक बात। और मुख्य बात क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो संस्कार हमारी बुद्धि में पड़े हुए हैं, अब कहा कि उन्हीं संस्कारों के द्वारा जिनसे बुद्धि हमारी अभिभूत हो जाती है, उन्हीं संस्कारों से अभिभूत बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को जान लेंगे अपने आप, क्योंकि हमारा आत्मा है। तो हमारा आत्मा है तो हमें दूसरे से जाकर सुनने की क्या आवश्यकता है, ये वेदांत विद्या सुनने की क्या आवश्यकता है। तो वो संस्कारों से अभिभूत जो बुद्धि है तो कुछ ना कुछ आपको दिखा देगी, एकत्व विज्ञान कठिन हो जाएगा। तो ये सत्य को समझने की जो ये यात्रा है वह निर्विघ्न पूरी होना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो चित्त है कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, व्यक्तित्व से बंधा है। इसकी इसको समझने के लिए दृष्टांत और व्याख्या आप लोग अपने आप कर लेना, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान, समय का अभाव है ना। अब तो कहा कि कहीं ना कहीं बंधा है, व्यक्तित्व से बंधा है। धीरे धीरे बोलेंगे आप उसको समझते जाना। तो व्यक्तित्व से अपने परिच्छिन्न भाव से बंधा है, अथवा परिवार से बंधा है, अथवा जाति से बंधा है, अथवा समाज से बंधा है, ये सब बंधन है, अथवा वर्तमान की संस्कृति से बंधा है, अथवा भूत की संस्कृति से बंधा है, अथवा कहता है हम भविष्य में ऐसी एक संस्कृति लाएंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे, उस एक कल्पना से बंधा है। भविष्य हमेशा कल्पना में जाता है, तो भूत हमेशा शोक में जाता है और वर्तमान मोह के दलदल में फंसता है। इस प्रकार से संस्कृति के आग्रह में फंसा है, अथवा सनातन धर्म इसकी रक्षा होनी चाहिए ऐसे एक विचार से फंसा है, अथवा कहता है कि सनातन धर्म नहीं सामाजिक धर्म चाहिए। सामाजिक धर्म सब समाज का जिससे कल्याण हो वो चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भविष्य में वेदांत ही संपूर्ण विश्व का धर्म होगा। अब महाराज साधु लोग चल पड़े, बोले कि अब हम वेदांत विद्या को सबको सुनाएंगे। तो वो जो अपना ब्रह्मात्मिक बोध की बात थी वो छूट गई, और महाराज लोग भी अधिकांश, कोई कोई मिले तो मिले, हमें तो नहीं मिला, अधिकांश ये कहेंगे कि महाराज आप क्या अकेले में बैठ बैठ के चिंतन करते हो, समाज को भी कुछ दो, समाज को कुछ दो। तो उस प्राग एकत्व विज्ञानात अभी ब्रह्मात्मिक बोध नहीं हुआ तो ये सब आके फंसाएगा, इसमें वो कहीं ना कहीं बंधेगा। इतनी ही बात नहीं, सब अपनी अपनी समझ को प्रमुखता देंगे। जो परिवार के मोह में है वो साधु से जाके कहेगा, साधु नहीं तो आप यदि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रेमपुरी आश्रम के लिए काम करते हैं, तो कहेंगे पहले परिवार का काम करो, पहले उसका काम करो, फिर बाद में ये काम करना। अर्थात अपनी अपनी समझ को सब महत्व देंगे, और जब अपनी अपनी समझ को महत्व देंगे तो उस समझ में आबद्ध हो जाएंगे, और वह जो आबद्धता है वह आपको सत्य के विचार से दूर कर देगी। तो कहां कहां फंसते हैं दृष्टांत दिए, आप इसके अतिरिक्त और भी विचार कर लेना। हम धर्म में फंसते हैं, हम संस्कृति में फंसते हैं, बहुत से बाहर की वस्तुओं में हम फंसते हैं, लेकिन प्राग एकत्व विज्ञानात और उसके संस्कार पड़े रहते हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। और इतना ही नहीं, नाना तो देखते हैं तो दूसरे की आलोचना करते हैं, वो तो ऐसा करता, हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक गांव में गए चलते चलते, तो उस गांव में अधिकांश आर्य समाजी थे, तो सनातन धर्मी सन्यासियों से वो लोग प्रसन्न नहीं रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये बताओ, गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहा ये बताओ कि कौन सा कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम की संन्यास आश्रम? महाराज उड़िया बाबा जी महाराज, उनकी तो वैराग्य की परिभाषा ही ये थी कि जो किसी की आलोचना नहीं करता वह वैराग्यवान है, वह विरक्त है। उनकी अद्भुत अद्भुत परिभाषाएं थी, सूत्र रूप में दी है, महाराज जी ने उनको खोला है। तो बाबा ने देखा कि तो सब गृहस्थ है, तो बाबा ने कहा कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, उसकी क्या महिमा? तो हम तो कहा करते हैं गृहस्थ आश्रम तो हमारे माता पिता है। तो कहा कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि वह तीन आश्रमों का पालन करता है, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, तीनों को रोटी खिलाता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अब वो अभी तक जितने साधु आए थे उन लोगों ने गांव से भगा दिया था, और गांव पड़ता है या हरिद्वार दिल्ली के रास्ते में, तो साधु वहां पहुंच ही जाते थे क्योंकि हरिद्वार जाते ही, तो अब वो उन्होंने भगा दिया, भगा देते थे। अब बाबा ने जब ये बात कही तो एक दूसरे का मुंह देखा, ये तो कुछ अच्छी बात करता है। अब बाबा वहां रुक गए और रुक कर और उन लोगों को सत्संग सुनाने लगे, सत्संग सुनाने लगे। एक महीने के बाद वो खुद कहने लगे कि संन्यास आश्रम उत्कृष्ट है, बाबा ने नहीं कहा पर ऐसा उपदेश दिए, ज्ञान के चर्चा सुनाई। तो क्या है कि आलोच कहीं ना कहीं यदि मैं सन्यासी हूँ इस अभिमान को कोई धारण करेगा तो वह भी आबद्ध है, उसकी दृष्टि भी आबद्ध है, क्योंकि सब में अपनी एक ही आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है। एक बात, दूसरी बात कि इसमें वह कार्य कारण भी लगाता है। जब भी हम विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि में कार्य कारण लगा होता है, और जो अच्छी चीज दिखती है तो उसका कारण ये है, और इतना ही नहीं, यह हम करेंगे तो इससे यह होगा, एक आशा। तो कारण हम लाएंगे और कार्य की हम आशा करेंगे, इसमें ये कार्य कारणात्मक जो बुद्धि है इसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि सत्य को समझने की इच्छा ही नहीं रहती, सत्य तो कहीं दूर छूट जाता है, हम उसको भूल जाते हैं कि उसकी इच्छा ही नहीं होती। तो इतने सारे घेरों को जब तोड़े कोई बहादुर तब तो उसके हृदय में जिज्ञासा आए, तो उसके हृदय में जिज्ञासा ही नहीं होती। तो ये जो सत्य है ये बहुत सरल है क्योंकि संविद मात्र है, आपके हृदय में विराजमान है, अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो, आगे के मंत्रों में है, दो मंत्रों में, मध्य आत्मनि तिष्ठति, सब क्रम से है ये मंत्र, तो उनको ऐसे ही समझना पड़ता है। तो संविद मात्र जो आत्मा है उसमें कार्य कारण भाव ये बनता ही नहीं, अर्थात संबंध जुड़ता नहीं है, तो हम जोड़ते रहते हैं, संबंध जोड़ते रहते हैं। प्राग एकत्व विज्ञानात से भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आपकी जो यह श्रृंखला बनी हुई है इसको तोड़ने के लिए आगम और शास्त्र चाहिए, आगम और गुरु चाहिए, शास्त्र और गुरु चाहिए। तो शास्त्र और गुरु चाहिए, आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, उनके द्वारा जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तब आप ये जान पाएंगे कि संविद मात्र जो आत्मा है उसमें तो ये सब का सब जो फैलाव है हमारे, चाहे अभी जो सुनाए थे विचारों का मोह लिए, तो ये विचारों का फैलाव, ये संकल्प विकल्प का फैलाव, ये प्राण शक्ति क्रिया शक्ति का फैलाव, यह आपके देह के द्वारा, जो देह क्या होता है, देह को लेकर हम परेशान रहते हैं क्योंकि द्रव्यात्मक है, द्रवतीति, ये गलता रहता है, इसका क्षरण होता रहता है, कोई भी ऐसा देह नहीं होता जिसमें रोग न लगा हो, शरीरम व्याधि मंदिरम। अब उसको, उस व्याधि मंदिर को लेकर और वहां अटकते रहते हैं। एक महात्मा कहते थे, देखो महाराज जी के निर्वाण के बाद हम लोग गंगा के तट पर थे, तो एक महात्मा कहते थे कि इसको चुग्गा डाल दो, अर्थात दाना डाल दो इसको शरीर को, जिसमें ये बीच में हल्ला नहीं करे, और फिर उसके बाद बैठकर आनंद से परमात्मा का ध्यान करो। अब महाराज जो उसको रोटी डाल दी जाती है उसको लेकर भी बड़ा शास्त्रार्थ होता है कि जब तुम भिक्षा मांगते ही हो, जब तुम्हारा अहंकार बना ही है, तो ये क्या है, अनुसंधान के लिए एक शैली बता दी गई हमारे देश में। और उसका तो ये संविद मात्र में सब कुछ आता जाता है। जब तक अज्ञान होता है तब तक इस संविद मात्र आत्मा का कार्य कारण से हम संबंध बनाकर रखते हैं, उसमें देश को खड़ा करते हैं, काल को खड़ा करते हैं, वस्तु व्यक्ति पदार्थ ये नाना तो एक साथ खड़ा होता है, अर्थात देश काल और वस्तु एक साथ खड़े होते हैं। जब वस्तु खड़ी होगी तो उसके साथ देश भी खड़ा होता है, काल भी खड़ा होता है, इसलिए कार्य कारण में उसको भी आप ले लीजिएगा। और जब अज्ञान मिट जाता है तो ये कार्य कारण संबंध नहीं रहता है। तो ये अज्ञान है तब तक यह संबंध अनिर्वाच्य है, अर्थात दुर्निरूप्य संबंध है, जिसका निरूपण नहीं कर किया जा सकता, जिसको जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा यह अनिर्वाच्य संबंध है। क्योंकि कार्य कारण का विचार भी पहले तो होता है, धर्म में तो हम करते ही हैं, ये कर्म करोगे तो वहां स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो नरक जाओगे, तो ये सब चलता ही है। तो लेकिन क्योंकि संविद मात्र की दृष्टि से क्यों दुर्निरूप्य अनिर्वचनीय है, जिज्ञासु को बात समझाई जाती है। तो संविद मात्र जो आत्मा है उसकी दृष्टि से नहीं है, किंतु व्यवहार दृष्टि से संबंध है, ये कार्य कारण संबंध है। तो अज्ञान काल में या व्यवहार दृष्टि से है, किंतु विवेक दृष्टि से नहीं है। तो पहले हम विवेक दृष्टि को लाएंगे, और विवेक दृष्टि से नहीं है तो एक दृष्टि से है, एक दृष्टि से नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय संबंध है, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, तो उसको ऐसे कहेंगे। लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से द्वैत है ही नहीं, तो संबंध कहां से होगा, जब द्वैत नहीं है तो संबंध कहां से होता। एक बात हो गई ना, तो एक हो गई व्यवहार दृष्टि, एक हो गई विवेक दृष्टि, और एक हो गई ज्ञान दृष्टि, तो अलग अलग दृष्टि हो गई।